गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जिह्वां पुत्रेति तन्मयतातरोभिनेदो तं सर्वभूतरिमातुं तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नय माम चरणन्तिके श्री राम नवमी है। आज ही के पुनीत दिन में श्री रामचंद्र जी का आविर्भाव हुआ था। विशेष करके रामचंद्र जी के आविर्भाव का कुछ कारण बतलाया गया है कि नारद जी का विशाल नारद जी कभी तपस्या कर रहे थे भगवान की आराधना, उस समय कामदेव प्रकट होकर के उनको पतित करना चाहा, किंतु ये मुस्कुराकर उनसे बोले आप अन्यत्र जाइए, हमारे हृदय में राम है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शंकर जी ने क्रोधित होकर के कामदेव को भस्म कर दिया था, किंतु ये क्रोधित नहीं हुए, इसलिए कुछ इनके अंदर में अभिमान हो गया। अभिमान तो नहीं हुआ, किंतु जगत को दिखलाने के लिए, शिक्षा के लिए ऐसा किया। ये शुभ समाचार देने के लिए सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास में गए, क्योंकि उनके ये पुत्र हैं। उनसे कहा कामदेव हमारी आराधना में विघ्न डालने के लिए आए थे, किंतु हमने हंस करके उनको विदा कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो तुम्हारा बड़ा काम है। शंकर जी भी बड़े क्रोधित हो गए थे और उसे जला दिया, किंतु आप हंस करके मुस्कुरा करके रह गए, किंतु ये बात किसी से मत कहेंगे, हमसे जो कहा दूसरे से मत कहिए, अपने को संयत कीजिए। भगवत भजन करने के समय में थोड़ी सी कुछ हो जाती है तो हम लोगों को बहुत अभिमान हो जाता है, तो अभिमान नहीं होना चाहिए, अपने को संयत रखना चाहिए, विशेष करके क्रोध इत्यादि न हो। तो ये शंकर जी के पास में गए, उनसे भी कहा, शंकर जी ने भी उनको मना किया कि हमसे जो कहा, मैं तुम्हारा गुरु हूं इसलिए कहा कोई बात नहीं, किंतु आप विष्णु से मत कहना, किंतु माने नहीं, विष्णु के पास में गए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, उनकी वंदना की। इसके बाद में उन्होंने उनसे भी वैसे ही कहा, मैं आपकी आराधना कर रहा था, तो उस समय में कामदेव आए और तरह तरह की चेष्टाएं की जिससे कि हमारा ध्यान भंग हो जाए, किंतु नहीं हुआ। इस पर वो बोले तुम्हारे जैसा कोई जगत में भक्त नहीं है, बड़ी प्रशंसा की। और प्रशंसा करने के बाद में वो पृथ्वी लोक में जब लौटने लगे तो उन्होंने ऐसी माया रची, एक सुंदर नगरी बना दी और उसमें एक 16 वर्ष की राजकुमारी और उसका स्वयंवर हो रहा था। जब ये आए तो उन्होंने देखा जैसे इस लड़की का स्वयंवर हो रहा है उसके पिताजी के पास में। पिताजी ने कहा जरा मेरी लड़की कहाँ देखिए, इसके भविष्य में कैसी संभावनाएं हैं, सुख से रहेगी या दुख से, उसके हाथों को देख करके ये मुग्ध हो गए। इसे जो विवाह करेगा वो विष्णु होगा और वो कभी नहीं मरेगा, अजर अमर रहेगा, उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकते। और ये चिर सौभाग्यवती रहेगी, बहुत ही इसके गुण इसके हैं इस लड़की के। उसका सौंदर्य देखा, उसका गुण देखा, रूप देखा, मोहित हो गए। उन्हें सोचा जी इस लड़की से मेरी शादी हो जाती तो अच्छा होता। कामदेव जिसको कुछ न कर सके, उनके अंदर में ये मोह होने से भगवान ने देखा जिसे इसका कुछ ऑपरेशन करना जरूरी है। हमारे प्रिय भक्त के अंदर में ऐसी भावना आई है, इसलिए ऐसी उन्होंने माया रचना की। इन्होंने थोड़ा सा दूर इधर उधर जाकर के ध्यान लगाया भगवान का, और लगा करके भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा जे तुम वर मांगो, क्या चाहते हो? उन्होंने मैं आपकी आराधना की, आज से मैंने कुछ नहीं चाहा, आज थोड़ी सी चीज चाहता हूं। सोएगा तो उठा करके खड़ा कर दूंगा, रात भर नींद नहीं आई। जब कोई सोएगा आंख थोड़ा सा ऐसा करे उठा करके खड़ा कर देंगे। Those who will sleep here, there is no, here is not place of sleeping. So if anyone sleep, not sitting like this, I will tell them to go from here or stand up on the bench. आज बतलाओ, हाथ उठाओ जे आज कौन कौन आरती में आया था, जरा हाथ उठाओ, कौन कौन आरती में आया थे,
कौन?
सब बाकी लोगों को धिक्कार है, बहुत लाखों लाख बार धिक्कार है, नहीं आप लोग तो पास है। तो वही दो ना, ये तो भालू था। अरे जैसा कर रहे हैं वो दो, तो क्या समझता है तुम, इसको लगा दो जो भाग। तो देखो तो मेरा घर ऊपर हो जाने से ये सब हुआ है। मैं डरता हूं जब मैं कहीं उतरूंगा पैर टूट जाएगा, इसलिए मैं नहीं आता। तो हमारे देखा देखी सब लोग करते हैं जो आरती में नहीं आए। यदि आरती में नहीं आएंगे, प्रवचन में नहीं आएंगे, कीर्तन में नहीं आएंगे, तो मठ में आने की जरूरत क्या है? मठ में आने की क्या जरूरत, घर में ही रह जाए, पुस्तक वहां पर पढ़ लेंगे और दो चार फेरा माला लगा लेंगे, कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग अपने समय में ऐसा कभी भी नहीं देखा जो आरती में नहीं कोई आए, घंटा बजते ही एकदम सब लोग आ करके खड़े हो जाते थे। आजकल जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है वो समझता है कि मैं क्यों आऊं, दूसरे कुछ हैं जब सीनियर हो गए हैं तो मैं क्यों आऊं। जितने नए लड़के आए हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं, वो आरती में आए। मैं समझता है कि वो ना आए कोई बात नहीं है, जो पुराने आदमी हैं जिसको भक्ति कुछ बड़ी है, अनुशीलन करना चाहते हैं, ये भक्ति का अंग है, तो उनको तो जरूर होना चाहिए। तो हम लोग साधन में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, अपनी नींद पर काबू नहीं रख सकते, प्रवचन में भी आएंगे तो सोएंगे, कोई साधन भजन नहीं करेंगे, कोई क्लेश नहीं करेंगे, आराम से खाएंगे, तो भजन क्या होगा? रामचंद्र भगवान होकर के देखो कैसा कष्ट किया, 12 वर्ष आराम से सोए वनवास के समय में, सीता जी को वनवास देकर के अपने आराम से रहे, साधन भजन भाई करना है तो खूब खूब ठीक से चीजें जिसे उसका फल हो। जब आरती में नहीं आएंगे, कीर्तन नहीं सुनेंगे, प्रवचन नहीं करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे तो फिर क्या लाभ है। बाहर के लोग आते हैं खूब सवेरे आकर के अपना सब आरती टारती सब देखते, उनको कुछ लगन है, हम लोगों को यहाँ रहते हुए लगन है। आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट ज्वाइन आरती कीर्तन, यू डोंट हैव वरी फॉर कीर्तन इन मॉर्निंग और इवनिंग आर, यू शुड केयर फॉर दिस। एंड इफ यू आर नॉट ज्वाइनिंग कीर्तन आरती एंड ऑल अदर थिंग, हाउ यू कैन कंटिन्यू योर साधन भजन। मैं क्या बतला रहा था, तो वैसे जब परीक्षाएगी तो क्या होगा, जब नारद जी जैसे लोगों की ये अवस्था बतला रहे हैं वो देख करके मुग्ध हो गए। उन्होंने राजा से कहा जे मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने देश देशांतर के राजा के लड़के आए हैं, बड़े सुंदर से सुंदर, बड़े बड़े धनी मानी समृद्ध, आप ही उसी में खड़े हो जाइए, यदि मेरी लड़की आपको वरण कर लेगी तो शादी हो जाएगी। तो इसलिए भगवान की आराधना की, भगवान से कहा जब मैं ऐसा चाहता हूं कि आप कुछ क्षण के लिए अपना रूप हमें दे दीजिए। मैं कहा तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे कल्याण जैसा होगा वैसा मैं करूंगा, जाओ। तो उन्होंने सोच लिया जैसे कल्याण माने हम तो शादी करना चाहते हैं, इसलिए वो रूप दे दिया और जा करके सज धज करके गले में माला टाला दे करके और सामने आए। तो जिधर जिधर खड़े होते उधर से लड़की नाक सिकुड़ा कर इधर से उधर चली जाती और ये बंठन करके फिर सोचते जैसे इसको उसने देखा नहीं, फिर उधर ही में चले जाते। चारों तरफ उनको नाक में लके लगा करके चारों तरफ में घुमाया, तब अकल नहीं आई और शिव जी के दो गण जो उनके पास में थे वो हंसते, क्या अद्भुत रूप है, क्या अद्भुत रूप, वाह वाह, अब इस बार आप थोड़ी सी चेष्टा करने से आगे जाने से आपकी शादी हो ही गई। हंसते थे किंतु नहीं समझ सके। थोड़ी देर के बाद ही में भगवान नारायण गरुड़ पर बैठ करके वहां पर उपस्थित हुए और उनको देखते ही लड़की ने उनके गले में माला डाल दी स्वयंवर की और वे उसे अपनी गरुड़ के पीठ पर बैठा कर अपने बाएं तरफ बैठा करके उड़ करके चले गए। नारद जी को बड़ा क्रोध हुआ था, क्रोध हुआ और वे पीछे पीछे चले बैकुंठ में पहुंचे। जैसे आज तक आपकी उपासना की, इसी बीच में बंदरों ने कहा जी जरा रूप तो देखिए कितना सुंदर रूप है और देख करके भाग गए। उन्होंने पानी में अपना रूप देखा, बंदरों का काला मुख, जला हुआ मुख, बड़ा क्रोध हुआ और उसी समय गए बैकुंठ में और उनको अभिशाप दिया, जाओ तुम भी अपनी स्त्री से वियोग होगा तुम्हारा और उसके लिए रोएगा जैसे हम रो रहे हैं और तुमको ये बंदर ही सहायता करे। जब ही अभिशंपा दे दिया तो ही रामचंद्र जी ने माया हटा दी भगवान ने और हटाने के साथ ही साथ में वो समझ गए और बड़े दुखित हुए, भगवान के चरणों में गिर गए, क्षमा मांगी, कहा जी अब तुम ठीक हो गया, अब से तुमको माया नहीं व्यापी, कभी अभिमान मत रखना और इस तरह से मत होना। नारद जी जैसे व्यक्ति को नाक में नकेल लगाकर और उसने घुमा दिया, इसलिए हम लोगों को सावधान रहनी चाहिए, याद रखने चैतन्य महाप्रभु जी क्षमा नहीं करेंगे, वो तो सब जानते हैं, इसलिए इस विषय में सबसे सावधान रहना चाहिए। जितने भी प्रलोभन की बातें हैं, आदमी प्रतिष्ठा जिसको चाहता प्रतिष्ठा भी छोड़ देता है काम में लुप्त होने पर, कुत्तों जैसी दशा हो जाती है स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। इसलिए भजन करें, भक्त विनोद ठाकुर कहते अलग अलग भजन करें, एक साथ में भजन करने के लिए परस्पर दिल्लगी हंसना इत्यादि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। भक्त विनोद ठाकुर ने जैव धर्म में भी ऐसा दिखलाया है, इसलिए इस विषय में सावधान होकर के हम लोग साधन भजन करें। तो इस नारद जी की के इसको अभिसंपाद के लिए हुआ है, और भी महिप्रताप और सबकी ऐसी भानु प्रताप इत्यादि की ऐसी बातें हैं जिसके कारण उनको अभिसंपात हुआ था। जय विजय भी इसके कारण है, जय विजय को अभिसंपात दिया था, उसमें एक जन्म जब रामचंद्र हुए तो वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए थे, इसके लिए भी। किंतु जितने भी बातें दिखलाई गई हैं ये गौण है। भक्त विनोद ठाकुर जी ने नवदीप धाम महात्म में संकेत दिया है, ये बातें मूल नहीं है। रावण को और कुंभकर्ण को उद्धार करने के लिए अथवा भानु प्रताप के वो अभिसंपात से या नारद के अभिसंपात से, ये है कारण। युग धर्म भी हो सकता है, किंतु असल कारण ये है कि उसके पूर्व कृष्ण लीला में या उस लीला में भी रामचंद्र जी वनवास के लिए निकलते हैं, सीता जी और लक्ष्मण उनके पास होते हैं, नवद्वीप धाम में पहुंचते हैं मुद्दुम द्वीप में, और रामचंद्र जी वहां पर पहुंचकर कुछ मुस्कुराते हैं। सीता जी पूछती हैं ये किस लिए मुस्कुरा रहे हैं, तो इसलिए कि मैं इस जन्म के बाद में जब मैं कलियुग में अवतरित होऊंगा तो उस समय मैं संन्यास लेकर अपनी मैया को और तुम्हें रुलाकर, तुम विष्णु प्रिया होगी और तुम्हें रुला करके हम भी संन्यास लेकर के चले जाएंगे। ऐसा क्यों? प्रेम के दो पहलू होते हैं, एक मिलन और एक विरह, एक संयोग और एक विप्रयोग, विप्रलंब। मिलन में कैसे परस्पर भाव होते हैं और कैसे परस्पर सेवा होती है ये देखा जाता है। मिलन में सीता जी का विवाह हुआ, उस समय में जब प्रथम मिलन हुआ तो रामचंद्र तुलसीकृत रामायण में ये सब वर्णन किया गया है, वाल्मीकि रामायण में भी। राम के रूप को देख करके सीता जी मुग्ध हो गई, सीता जी के रूप को देख करके मुग्ध हो गए रामचंद्र जी, और रामचंद्र जी कहते हैं कि आज मुझे प्रायश्चित करना है। क्यों? रघुकुल रीत सदा चली आई, उनका मन कभी भी विचलित नहीं होता। आज एक राजकुमारी का रूप देख करके मैं अपने को छुप्त कर बैठा, मैं मुग्ध हो गया, ये ऐसा क्यों हुआ? हमारा मन तो विचलित नहीं होना चाहिए, किंतु आज हो गया क्यों? तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मालूम होता है ये इसके साथ ही आपकी शादी होगी, इसलिए आपका मन विचलित नहीं हो सकता रघुवंशियों का मन। तो मालूम ऐसा ही होता है, शायद ये अवश्य ही शादी होगी। उस समय में धनुष यज्ञ हो रहा था, रामचंद्र जी विश्वामित्र के साथ में लक्ष्मण जी के साथ में आए, और विश्वामित्र की इच्छा से आदेश से उन्होंने धनुष को एक क्षण में उठाया, कब उठाया किसी को पता नहीं, और उठाते ही झपके से उसकी प्रत्यंचा खींची और मिनटों सेकेंडों में धनुष तीन खंडों में विभक्त हो गया, प्रचंड शब्द हुआ। इसके बाद में सीता जी वरमाला लेकर के खड़ी थी, सब उनकी सहेलियां उनको दे रही हैं, उनको सहायता कर रही हैं। प्रेमी इतनी अधीर हो गई सीता जी जो उनके हाथ नहीं उठ रहे, बस रामचंद्र जी की तरफ एक बार देखा, इसके बाद उनकी नजर नीचे हो गई। कितना आनंद उनको हुआ इसका वर्णन तुलसीदास जी नहीं कर पा रहे। फिर सब लोग मिल करके उनका हाथ उठा करके रामचंद्र जी के गले में माला दी, और रामचंद्र जी ने भी अपनी इसके बाद में विवाह हो, उसमें कितना आनंद ये मिलन में होगा। लीला स्वयंवर रसम लभते जयश्री, इसी की ये उपमा, कितनी सुंदर ये। और भी जब रामचंद्र जी का वनगमन हुआ उस समय सीता जी उनके साथ में गई, कितने क्लेश सहे किंतु उस मिलन में कितना आनंद था। यदि सीता जी राजभवन में रहती, रामचंद्र जी वन में चले जाते तो उनको सुख होता? उनको कदापि सुख नहीं। वन में कितने तरह के कष्ट आते हैं किंतु एक साथ में रहने से अकेली सीता जी को रामचंद्र जी की पूरी सेवा करने को सुजोग मिलता है, जो कि यहां पर नहीं होता। इसलिए संपूर्ण रूप से उनकी सेवा करती हैं। और रामचंद्र जी भी अयोध्या में रह करके अपने मन की भावनाओं को सीता के प्रति जो प्रकट नहीं कर पाते, वो सारी भावनाएं प्रकट करने का उनको सुजोग मिला निकट से। ये सब प्रेम की संजोग की लीला। और वियोग की क्या, वियोग में प्रेम कैसा होता है ये दिखलाया। उस समय में जो मिलन में जो सेवा का सुजोग था, वो सारा सुजोग उनकी स्फूर्ति में उपस्थित होता है। एक क्षण के लिए भी वियोग नहीं होता भीतर से। तो ये दो पहलू दिखलाना था, वियोग में क्या स्थिति होती है। इसलिए असल में तो पहली बार तो जो दिखलाया गया है वो माया का कार्य था। रावण को वध करना था, कुंभकर्ण को वध करना था, इसलिए माया की सीता जी को लिया और असल सीता जी को अग्नि को दे दिया। मैं अब लीला करूंगा। सूर्पनखा आई, इसके बाद में माया सीता जी उनके साथ में रही। तो माया सीता तो उनके पास में रह नहीं सकती, कभी संभव पर नहीं है, कभी संभव नहीं है। इसलिए साथ ही साथ में रावण ने उसे चुराया मारीच की सहायता से। और अंतिम तक रावण से युद्ध कर उनको वंश के साथ में ध्वंस करके जब सीता आई, तब तक ये माया सीता जी थी। उन्होंने सारी लीलाएं की, विरह में तड़फे। और सीता जी के लिए राम का कितना वियोग, और इधर में सीता जी अशोक वाटिका में रह करके उनके लिए कैसा विलाप कर रही है। एक दिन भी नहीं खाया, स्नान नहीं किया, कोई श्रृंगार नहीं किया। 1 वर्ष शायद रही। तो इस प्रकार से गंवाया। उधर रामचंद्र जी भी, रामचंद्र जी के विलाप का तो वर्णन है, सीता जी का उतना नहीं है, किंतु सीता जी का कितना होगा दोनों में वियोग, ये दिखलाने के लिए। और अंत में जब सीता जी आई तो कुछ बहाने से उन्होंने असल सीता को प्रकट करके रखा और माया सीता को दूर कर दिया। मैं तुम्हें ग्रहण नहीं करता सीता जी को। सीता जी ने उनसे कहा, जे तो पहले क्यों नहीं कहा। फिर उन्होंने कहा, जे तुम्हारी जो इच्छा करो, मैं तुम्हें रख नहीं सकता। सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा, जे तुम अग्नि जलाओ और हम उसमें प्राण को प्रत्याग कर देंगे। उन्होंने जलाया, बहुत लकड़ी इकट्ठी करके जलाया और उसमें सीता जी ये कह करके, यदि राम के अतिरिक्त हमारा कोई स्पर्श न कर रहा हो तो हमारा शरीर जल करके भस्म हो जाए। किंतु जब ही वो आग में प्रवेश उन्होंने किया, वैसे ही आग सुशीतल हो गई और अपने देव सीता जी को लेकर और राम को कहा, जे सीता जी परम पवित्र हैं, आप इन्हें ग्रहण कर। वो जो महामाया वाली जो थी, माया वाली सीता, वो पवित्र नहीं है। जगत का सृजन इत्यादि कार्य, उसका संचालन करना उनका कार्य है, उसमें माया का कार्य है, कुछ अज्ञानता का भी कार्य है। जीवों को मोहित करके और उन्हें दंड देती हैं, किंतु महामाया जो है पूर्ण चिन्मय है। इसलिए पवित्रता का ये मतलब, सीता जी जोग माया है,
महामाया नहीं है, स्वरूप शक्ति है एक तरह से, इसलिए परम पवित्र है, चिन्मय है। तत्पश्चात फिर उनके साथ में मिले, अयोध्या गए। 11,000 राज्य वर्ष राज्य करने के बाद में सीता जी का पुनः बताया गया। उसमें विरह में सीता जी की क्या स्थिति थी और राम की क्या स्थिति थी। सीता जी को सांत्वना देने वाले उनके दो पुत्र थे और महाराज वाल्मीकि जी भी थे, और राम को सांत्वना देने के लिए कोई भी नहीं है। लक्ष्मण जी हैं किंतु मौन रहते हैं, बोल नहीं पाते, क्योंकि उनके प्रति ऐश्वर्य भाव है, इसलिए उनको नहीं कह पाते। किंतु ये अपने बच्चों को लेकर के गोदी में लेती हैं, रोती भी हैं और उनको देख करके खुश हो जाती हैं, और वाल्मीकि जी का सब समय हरि कथा सुनती हैं, इसलिए इनको सांत्वना है पूर्ण रूप से। अवधा रामचंद्र जी राजभवन में रहकर चटाई के ऊपर में सोना, वैसे ही भोजन करना फल मूल, और उनके वियोग में तड़पना और जलना, उनको सांत्वना देने के लिए कोई नहीं है। ये सब क्या चीज है, विप्रलम्भ के पहलू हैं, जिसमें प्रेम तपता है, तप करके और भी उज्जवल हो जाता है। संभोग में, मिलन में थोड़े सी संभोग की भी कुछ कामना हो सकती है। इसलिए हमारे आचार्यों ने भजन में विप्रलम्ब भाव से भजन करने का उपदेश दिया। हम लोग समझें जो कृष्ण से करोड़ों करोड़ों अनंत काल से हम लोग बिछड़े हुए हैं, इस चीज को हम उपलब्धि करें और इसके साथ में वैसा भजन करें। जिस समय में किसी स्त्री को उसका पति छोड़ दिया हो और छोड़ के चली जाओ हमारे घर से, तो श्रृंगार करेगी और खाए पिएगी आराम के साथ में कि नहीं, वैसे समझो जो कृष्ण ने हमको प्रत्याग कर दिया है। हमारे अंदर में कुछ कामना वासना आई, हमने कुछ दोष अपराध किया और प्रभु ने अभी हमें दूर कर दिया है, तो इसके लिए हम खूब आराम से खाएंगे पिएंगे हंसेंगे श्रृंगार करेंगे और बड़े आराम के साथ में सब कुछ जीवन निर्वाह करेंगे, तो ना दुखी होना चाहिए, इसकी उपलब्धि होनी चाहिए। इसलिए रूप रघुनाथ जी, सनातन गोस्वामी जी इसी प्रकार से करते थे। संख्या पूर्वक नाम गान तिथि कालावसानी कृत निद्राहार विहार काग विजित, निद्राहार विहार सबको छोड़ दिया, दिन रात कृष्ण के प्रेम में तरंगों में इधर उधर होते थे, रोते थे दिन रात, वृक्षों के एक एक वृक्ष के नीचे एक एक दिन रहते थे। यदि भजन में इस विरह की अनुभूति नहीं हुई तो फिर वो भजन अभी आरंभ नहीं हुआ। इसलिए जयो धर्म में देखो श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जितने लोगों का वर्णन किया है, जे कैसे भजन करते हैं, महाप्रभु के गणों को देखे, जे कैसे महाप्रभु खुद कैसे दिन रात रोते कलपते, ऐसे भजन होना चाहिए। तो ये रामचंद्र, हाँ, तो इसीलिए प्रेम का दो पहलू दिखलाया, और रामचंद्र जैसे सीता जी की प्रतिमूर्ति सोने का स्वर्ण उनकी प्रतिमा की और उसका पूजन करते थे राम खुद, अब महाप्रभु जी के लीला में वो क्या किया इसका प्रतिदान देने के लिए, अब विष्णु प्रिया ही उनकी प्रतिमूर्ति का पूजन करेंगी और ये सन्यासी होकर के रामचंद्र जी महल में रहे और सीता जी को बाहर किया, और इस लीला में इन्होंने क्या किया, खुद ही संन्यास लेकर के वनों और जंगलों में भटकते रहे और लक्ष्मी जी को विष्णु प्रिया जी को अपने घर में रखा, और वहीं पर उन्होंने स्वर्ण तो नहीं ये नीम के दारू विग्रह करके और उनका पूजन करती, किस प्रकार से भजन वो करती थी आप लोग जानते हैं। यदि भजन हो तो विष्णु प्रिया जी जैसे ही कैसा भजन होना चाहिए, इसलिए ये सब बातें इसलिए मालूम पड़ता है। ये प्रेम के इस विप्रलम्ब पहलू को आस्वादन करने के लिए राम ने इस जगत में वो पधारे थे, और उन्होंने संयोग और वियोग दोनों का ही किया, जैसे कृष्ण ने भी संयोग और वियोग का किया। ब्रज में जब तक रहे तब तक संयोग की लीला, और इसके बाद में वियोग की लीला उन्होंने प्रकट की। इसी तरह से राम का प्रधान कारण यह था, जैसे कृष्ण का प्रधान कारण था प्रेम, आस्वादन करना और दूसरों को प्रेम देना, चैतन्य महाप्रभु का युगावतार के लिए धर्म की प्रतिष्ठा करना, और साथ साथ में इस प्रेम का आस्वादन करना, उसका कुछ थोड़ा सा अंश जगत को देना, ये मूल कारण है। उसी तरह से राम का भी समझिए, उन्होंने वाल्मीकि के संवाद में कुछ इनके लीला चरित्र का वर्णन हुआ है। वाल्मीकि जी आप लोग सुने हैं कि वो दस्यु थे, लूटमार करना ही उनका कार्य था, चमन ऋषि के लड़के थे, रत्नाकर उनका नाम था, लोगों को मारकर जीविका का निर्वाह करते थे, किंतु नारद जी की कृपा से उन्होंने ये सब काम छोड़ दिया और छोड़ करके वाल्मीकि बने। बहुत दिनों तक तपस्या की, हजारों वर्ष, दीमक खा गया उनके शरीर को, अंत में ब्रह्मा जी ने आकर के कमंडलु से जल प्रोक्षण किया तो उनका शरीर नया हो उठा, और उन्होंने उनको कुछ वरदान दिए। तत्पश्चात ये वाल्मीकि जी एक दिन स्नान करने जा रहे थे अपने शिष्य भारद्वाज के साथ में प्रयाग में, नदी में उतर करके जब स्नान करने जाएंगे कपड़े रख दिए, उसी समय एक बहेलिया आया और जोड़े क्रौंच पक्षी को में से उसके पुरुष क्रौंच को उसने तीर मारा, वह तीर उसके शरीर में इस पार से उस पार हो गया और छटपट करता हुआ गिर पड़ा। क्रौंची बहुत करुण स्वर से रोने लगी, वो छटपटाता हुआ मर गया। वाल्मीकि ऋषि को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने अभिसंपात दिया, रे निषाद तू यहां पर मत रह, एक क्षण भी न मार, तुमको कभी भी शांति और सुख नहीं मिलेगा। और उन्होंने छंद में अनुष्टुप, चार चरणों में अनुष्टुप छंद का उनके अपने मुख से स्वतः निकला, मां निषाद तमगमा शाश्वती समा, तो इस तरह से निकला। उन्होंने कहा ये मेरे मुख से ऐसे ये श्लोकबद्ध कैसे आ गया, ये छंद कैसे आया, अनुष्टुप छंद। चिंता कर रहे थे इतने में ब्रह्मा जी आए, बोले जी इसी छंदों में तुम राम की लीलाओं का वर्णन करो। उन्होंने कहा मैंने तो राम की लीलाओं को देखा नहीं। तब उन्होंने भी ऐसा ही उनको कहा, भक्ति जोगेन मनसी सम्यक प्रणीते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्ण मायांच जद अपाश्य, भक्ति जो का अवलंबन करो और हमारी कृपा से और भगवान की कृपा से तुम्हारे इस ध्यान योग में ही राम की सारी लीलाएं जैसे व्यास के हृदय में अंतर्भूत आविर्भूत हुई थी, ऐसी सारी लीलाएं उनके हृदय में आविर्भूत हुई। और उन्होंने राम की सारी लीलाओं को जन्म से लेकर के उसके पहले से लेकर के अंत तक सारी लीलाओं को उन्होंने प्रत्यक्षवत दर्शन किया, और उसी का उन्होंने शब्दों में अक्षरों में लिपिबद्ध किया। यही रामायण वाल्मीकि रामायण विश्व का सबसे पहला काव्य हुआ, इसके पहले अभी तक अक्षरात्मक रूप में कोई काव्य नहीं था, वेद भी नहीं लिखे गए थे, वेद तो पीछे लिखे गए, इसलिए सबसे पहले उन्होंने किया। और सबसे पहले उन्होंने अपने शिष्य लव और कुश को इसका अध्ययन कराया, इसका गायन भी किया जा सकता है। उन्होंने जो देखा समाधि में उसका इन्होंने वर्णन किया है वाल्मीकि रामायण के तीसरे सर्ग में, बाल्यकांड के तीसरे सर्ग में बतलाया है। वाल्मीकि रामायण ही मूल रामायण है, यही सब अपेक्षा मूल प्रमाणिक है रामायण। जैसे वेदव्यास का श्रीमद् भागवत है और सब हैं, वैसे ये मूल रामायण है। ये प्रमाणों में भी अमल प्रमाण इसको माना गया है। पीछे से और भी बहुत से रामायण बने, किंतु और जितने भी रामायण बने हैं उनमें अपेक्षाकृत तुलसी रामायण श्रेष्ठ है और कुछ प्रमाणिक भी है। क्यों प्रमाणिक है? कि वो श्रीमद् भागवत का अनुवाद है, राम का चरित्र है, किंतु जहां तक जितने भी सिद्धांत लिए गए हैं वो सब श्रीमद् भागवत के अनुवाद स्वरूप है, इसलिए ये प्रमाण स्वरूप। विशेष करके उत्तरकांड जितना है तत्व की बातें वो सब श्रीमद् भागवत के से लिए गए हैं। कहीं कहीं पर लोग उसको समझने में भूल करते हैं और कहते हैं कि यह मायावाद मिश्रित ग्रंथ है, कि यह गलत बात। वैसे सिद्धांत श्रीमद् भागवत में हैं भी हैं, जैसे तुलसीकृत रामायण में मिलते हैं, जैसे सिया राम मैं सब जग जाना, तो कृष्णमय भी जगत को महाप्रभु ने भी देखा और श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। अभेद मुक्ति और भेद मुक्ति की बात, अभेद मुक्ति की बात देख लाई है, श्रीमद् भागवत में भी उसका है। मुक्ति है किंतु भगवान के दिए जाने पर भी भक्त लोग उसे ग्रहण नहीं करते, और उसमें कुछ लोगों ने ग्रहण किया, राम ने उनको दिया भी। इस तरह से उनका जब हम विचार करते हैं सिद्धांत की दृष्टि से, तो उसमें भी मायावाद का कोई चिन्ह नहीं है, वो अपने समझने का फेर है। अब वाल्मीकि जी उसी का वर्णन कर रहे हैं जो समाधि में उन्होंने देखा, जिन लीलाओं का। तृतीय सर्ग, श्रुत्वा वस्तु समग्रम तद्धर्म तद्धर्मार्थ सहितम हितम व्यक्तम अन्वेषते भूयो जद्वृत्तम तस्य धीमतः। नारद जी के मुख से सुना सारी राम के लीलाओं को, सुन करके संपूर्ण रामचरित्र को, जो रामायण महाकाव्य की प्रधान कथा वस्तु था, सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी समाधि लगाई, भक्ति योग का अवलंबन। भक्ति योग का अवलंबन करना माने क्या? जो व्यास जी ने समाधि लगाई, भक्ति योगेन मनसि सम्यक परिहिते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्ण। भक्ति योगेन माने क्या? संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर, गुरु के चरणों में अपने को बेच कर, आपकी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसी भावना करे और उन पर निर्भर होकर के उनका चिंतन करे, तो वो लीला अपने आप आएगी। क्यों? स्वर्ण मुखे ही जीवादो स्वयं में उत्फूर्तता। जब तक श्रवण मुखी हमारी चित्त वृत्ति नहीं होगी, जब तक उसमें किसी प्रकार के भी शंका होगी, जब मैं भगवान का शरण लेने पर, अपने सदगुरु का शरण लेने पर, वो भी तो हमारे समान ही हैं, ऐसी थोड़ी सी भी शंका हुई तो क्या होगा? संदेहात्मा विनश्यति। विनश्यति मैंने क्या, मर जाएगा वो, उससे च्युत हो जाएगा भक्ति से। इसलिए आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, भक्ति के विषय में, भगवान की कृपा के विषय में और सद्गुरु की कृपा के विषय में कभी भी संदेह मत होना। हम लोगों को कभी कभी ऐसा होता है, ये क्या कारण है? कभी कभी मन लगता है सेवा में, कभी मन नहीं लगता है, सबका कारण क्या है? संदेह है। गुरु तत्व में भी संदेह है और भगवत तत्व में भी संदेह है, तत्व के संबंध में भी संदेह है, और भक्ति की भावना के प्रति, जो भक्ति सर्वस्व दे शक्ति है, इस पर भी संदेह। अपने बल पर कुछ होता है, जैसे अपने बल से मैं रुपया कमा रहा हूं, ऐसा अभिमान होता है। अरे तुमको बुद्धि किसने दिया? अपना बल कह रहा है। तुम बिजनेस खूब अच्छी तरह से चला रहा है, यह बुद्धि किसने दी? शरीर को ठीक रखा किसने? और कुछ दिनों के बाद में जब फेल हो जाएगा सब कुछ, तब क्या होगा? इसलिए अपनी बुद्धि के प्रति भरोसा ना रख करके वो जो उपनिषद का वाक्य है न क्या है, जमे वे सबते नयम आत्मा प्रवचन न लब्ध हो न मेधया न बहुना सूते न जम एव ये सब वेणुते। जब उनको हम वर्ण करेंगे ये प्रभु आपके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है, और फिर जब उनकी कृपा होगी, अंतर्मुख होना हमारा कार्य है और कृपा करना और रियलाइज करना उनका ये कार्य है। इसलिए हम अंतर्मुख होंगे, अर्थात अंतर्मुख माने वो क्या धी है ना, धी धीर जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने श्रीमद भागवत के दो दो जगहों में, हाँ तो वो धी मैंने क्या, गुरु के वचनों में, शास्त्र के वचनों में, भगवान के वचनों में संपूर्ण रूप से श्रद्धा जो है उसमें तनिक भी गलत नहीं है। भगवान के नाम में, भगवान की भक्ति में वो संपूर्ण शक्ति है जो शास्त्रों में भी नहीं लिखी गई, उससे भी अधिक होनी चाहिए। यदि ऐसा किसी को विश्वास हो जाएगा तो कभी वो विचलित हो सकेगा। देखिए नींद आ रही है ना, इतनी बीजवती वाणी बतलाया जा रहा है और नींद आ रही है दिल्ली के लोगों को और मथुरा के लोगों को। जरा सीधा बैठिए, तो सीधे एकदम ऐसे तन करके बैठो। बिजनेस में पैसा कमाने के समय में तो बड़ी उत्कंठा रहती है, 5 फोन एक साथ में लगते हैं, खड़े होकर के काम करते। ऐसी जब तक बुद्धि नहीं होगी भाई, भगवान के प्रति, भगवान नाम के प्रति, भगवत भक्ति के प्रति ये श्रद्धा, जो लिखा है एकदम परम सत्य है। विकीर्तम ब्रजु बधु भी इदंच विष्णु श्रद्धान्वितो जस, जो श्रद्धा पूर्वक, लौकिक की श्रद्धा नहीं भाई, कौन परमार्थ की श्रद्धा जिनके अंदर में है, कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है, ये हो श्रद्धा। ऐसा होने पर तो यदि भगवान का भजन साधन करेगा तो क्या होगा, पहले भगवत भक्ति आएगी और उसके बाद में उसके काम रोग इत्यादि सब दूर हो जाएंगे। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, और पहले काम को दूर कर लूंगा, अनर्थ दूर करके तब फिर मैं भजन करूंगा, प्रेम पीछे आएगा। तो ये इसका मतलब हुआ जो शास्त्र पर विश्वास नहीं है, इसलिए भक्ति देवी की कृपा नहीं होगी, लाख जन्मों तक भक्ति से विचित हो जाएगा। कोई भी आज तक देखा है साधन में, अनर्थग्रस्त लोग ही तो साधन भजन करके भगवान को पाए हैं, पहले भक्ति आई, अनर्थ अपने आप दूर हो जाएगा। इसलिए सेवन मुख के ऐसी दृढ़ श्रद्धा रखनी चाहिए, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति के द्वारा ऐसा संभव है। तो जब उन्होंने भक्ति का अवलंबन किया था, अनकंडीशनल सरेंडर किया, और आप ही हमारे एकमात्र हैं, भक्ति देवी का आह्वान किया, उसको अवलंबन किया निस्वार्थ रूप में, साथ साथ में भक्ति देवी आकर के राम की सारी लीलाओं को उनके सामने साक्षात्कार के रूप में प्रकट कर दिया। हम लोग अभी भी, अभी एक ऐसा होता है ना, होनहार बीरमान के हो तचीकने पात, सब बातें तो हैं किंतु इस पर ध्यान नहीं देते। यदि प्रारंभ से ही ऐसी हो भक्ति, श्रद्धा हो, पुष्ट होगी, और उसके पत्ते कैसे होंगे, जैसे कि वो बतला है ना, पहले 2 पत्ते होंगे, फिर 2 पत्ते होंगे, फिर 2 पत्ते होंगे, साधन अवस्था में क्लेश अग्नि और जरूर होगी, जिसको इसमें श्रद्धा नहीं है उनको नहीं होगी। एक मूर्ख आदमी भी जो पढ़ा लिखा नहीं है किंतु बुद्धिमान है उसको हो जाएगा, निरक्षर आदमी को। और बड़े बड़े पंडित लोग जब इस पर विश्वास नहीं होगा तो नहीं होगा। भगवान का नाम करने से, भक्ति करने से जरूर क्लेश अपनी होगी, जितने प्रकार के क्लेश हैं दूर हो जाएंगे, और शुभदा होगी। भाव भक्ति जब आएगी तो मोक्ष लोक उताकृत और सुदुर्लभ, ये दोनों हो जाएगा। और जहां प्रेम होगा तो कृष्ण को आकर्षण करेगी और कृष्ण का साक्षात्कार हो जाएगा भाई। ये जरूर विश्वास रखो। यदि प्रारंभ में ये विश्वास नहीं है नाम के प्रति, भगवान के प्रति, गुरु सेवा के प्रति, तो उनका मन विचलित रहता है। दिन भर एक विधवा नारी जिसका पति मर गया है, ऐसे दिन रात कोई उत्साह ही नहीं है भक्ति में, तो क्या भजन होगा। प्राण भी लेकर के हथेली में बड़े आराम के साथ आनंद के साथ में उल्लसित होकर के सेवा इत्यादि में जुटेगा, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो इन्होंने यही भक्ति जो का इस प्रकार से उन्होंने आवाहन किया लगाया, कौन सी भक्ति, अन्नाभिलाषिता शून्यम, अन्नाभिलाष छोड़ दिया, ज्ञान कर्म आदि इसको भी दूर कर दिए, और अनुकूल राम अनुशीलनम जब उन्होंने करना आरंभ किया भक्ति का, और साथ साथ में भक्ति देव उनके हृदय में आविर्भूत होकर के राम की सारी लीलाओं का यही क्रम है, ऐसा ही साधन होना चाहिए हमको बड़े उत्साह के साथ। जिसको भजन में उत्साह नहीं, उत्साह निश्चयात, निश्चयात कैसा, विश्व ब्रह्मांड का प्रलय हो जाने के बाद भी हमारा नाम हमारी रक्षा करेगा। विश्व ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, सब कुछ उलट जाएगा, किंतु शास्त्रों में जो नाम की महिमा लिखी, हमारे गुरु जी ने जो कहा ये परम सत्य है, इस तरह निश्चय कृष्ण अवश्य मिलेंगे इस भक्ति के द्वारा। जब गुरु जी ने बीज बोया है निष्फल होगा, गुरु जी का बोया है बीज क्या दिया, कृष्ण सेवा की वासना जो कि श्रद्धा के रूप में परिलक्षित होती है ऊपर से, तो गुरु जी का दिया हुआ यह नष्ट हो जाएगा। जरूर हमको क्रमशः धीरे 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 जरूर भक्ति होएगी, कृष्ण का जरूर ही दर्शन होगा, उनकी सेवा मिलेगी, ब्रज की भक्ति तक भी मिल सकती है। तो उत्साह निश्चय धैर्या तत्त कर्म प्रवर्तना, कुछ दिन नहीं हुआ या कोई किसी ने एक थप्पड़ दे दिया या किसी ने थोड़ा सा ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन माने क्या, जैसे भगवान ने नारद जी का ऑपरेशन कर दिया, महाप्रभु जी ने ऑपरेशन कर दिया किसको, छोटे हरिदास को और काला कृष्णदास को थोड़ा सा, या किसी को और थोड़ा सा ऑपरेशन हो गया, बस बिथक गए, बिथकना जानते हैं, विशेष रूप से थक गए, इसको कहते हैं बिथक जाना, तो बिथक गए। अब उनकी गाड़ी लाइन में आने पर ना जाने कितने वर्ष, या हो सकता है कि जन्म भी लग जाए भाई, किंतु भक्ति का तरीक तो और कोई गति नहीं है भाई, इसको समझ लो। इसलिए महापुरुषों ने बचपन से ही भजन इस तरीके से किया, तो वैसे हम लोगों को उत्साह के साथ में, निश्चय के साथ में, धैर्य के साथ तत्त कर्म प्रवर्तना, उसमें कभी भी तनिक भी कोई शिथिलता नहीं आए तब तो ये भक्ति होगी। तो उसके कृपा से जब ही अंतर्मुख हुए और भक्ति पर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, भक्ति देवी संपूर्ण रूप से आकर के राम की लीलाओं का दर्शन कराया। उन्होंने क्या देखा, वे कुश के आसन पर बैठ गए। विशेष करके हम समझते हैं गिरिराज गोवर्धन में हम जाएंगे, परिक्रमा करेंगे हरि कथा छोड़ करके, जमुना में जाएंगे, गंगा जी में स्नान करेंगे, कुंभल मेले में स्नान कर लेंगे, तो हम ये भक्ति आ जाएगी। लाख कोटि जन्म में नहीं होगा ये समझ रखो, लाख करोड़ों जन्म में। इसलिए भगवत भजन ये जो तरीके हैं, महाप्रभु जी के नियम है, विचार है, ऐसे चलो और तब तो भक्ति होगी। यदि उपेक्षा किया तो भक्ति देवी अपनी उपेक्षा नहीं सहन करेंगी, क्या करेंगी, और भक्ति को अपने स्थान में माया भक्ति को बैठा करके और असल में वो चली जाएंगी सीता जी, रामचंद्र जी अग्नि में दे देंगे, अग्नि को सौंप देंगे उसकी भक्ति को, और उसके बदले में क्या दे देंगे, माया की भक्ति दे देंगे। वे गुरु के आदेश से कुश के ऊपर आसन के ऊपर में बैठे, मुख किया पूर्व की तरफ में और विधिवत आचमन किया। हम लोग आचमन भी नहीं करते हैं, वैसे ही गुरु जी ने कहा तो कुछ मंत्र तय कर दिया, मंत्र का अर्थ भी नहीं समझते, मंत्र का इष्ट देव भी नहीं समझते, मंत्र के प्रति शरणागति आत्मनिवेदन इत्यादि प्रपत्ति भी नहीं होती। ऐसे ही गुरु जी ने कहा है बलाय टालने के लिए और बातों की चिंता करते हुए बैठते, तो कहां से फल आए, आए कहां से फल, जब विधिवत करो स्नान करके पूर्वाग्र में बैठो, कुश के आसन पर बैठे। हम लोगों के लिए बनते हैं उनके बड़े बड़े मोटे आसन, कुश के आसन में कुछ वैज्ञानिक चीजें हैं। काठ के आसन पर बैठने का एक वैज्ञानिक कुछ पहलू है, तो ये सब कारणों से ये बतलाया। ऐसे ही नहीं, हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया, आसन पर बैठे विधिवत आचरण किया, आचमन करते हैं। कितने लोग आचमन करते हैं संध्या के पहले? हम समझते कि विधिवत करने वाले बहुत ही कम होंगे। आचमन का उद्देश्य क्या है ये भी समझना चाहिए। आचमन से भूत शुद्धि होती है। कैसे हुई? विष्णु को मैं अपने को समर्पण करता हूं, नमस्कार, ओम विष्णुमय नमः। माने क्या? हे व्यापक विष्णु, जो आप सर्वत्र व्यापक है, हमारे हृदय में सर्वत्र हैं, जो हमको देख रहे हैं, आज आपको देखते ही आपकी साक्षी दे करके मैं अपना नमस्कार, अर्थात अपने जितने भौतिक भी अभिमान है, स्थूल अभिमान है, देह में आत्मबुद्धि है, इन अभिमानों को छोड़ करके आपके शरणागत हो रहा हूं। ऐसा आचमन करो तो अपनी बुद्धि टुद्धि, ये माइक है और ये सबको छोड़ करके करो आचमन। देखो, जो पहले आचमन नहीं करेगा ना, तो क्या आएगी? संसार की के विषय इसमें आएगी। इसलिए विधिवत आचरण माने वो है आंतरिक भाव। ये पानी लेकर के और सिर पर कर लिया विष्णु और उनका कोई चिंतन नहीं है, विषयों का ये सब नहीं छोड़ा, तो कैसे होगा? इसलिए उनके शरणागत पहले आचमन किया और स्थिर भाव से, सीधा भाव से, एकदम अन्य करने से ऐसे बैठो, पैर पर इस पर ये लगा करके। अभी जितने आदमी बैठे हैं सब बैठे हैं ऐसे आराम के साथ में, स्थिर भाव से। स्थिर माने क्या? चित्त को स्थिर किया, शरीर तो स्थिर हुआ, अब चित्त को भी स्थिर करो। स्थिर माने क्या? चित्त जो डामाडाल हो रहा था विषयों में, इधर में इधर में, इस पत्ते से उस पत्ते पर, उसको स्थिर कर दो एक पत्ते पर। और एक पत्ता कौन? जो तुम्हारा इष्ट देव, जिस मंत्र को तुम करने जा रहे हो, उस पर एकदम स्थिर करो और चित्त कहीं नहीं जाए। आंख बंद करने पर या तो नींद आएगी, अन्य तो भीतर से स्फूर्ति आएगी। जो कुछ उन्नत कुछ हुए हैं उनको क्या होगी? वो एकदम सतेज रहेंगे और चेतनता रहेगी और उनकी स्फूर्ति होगी उस पर, चित्त को स्थिर करने पर, जिस विषय के लिए स्थिर कर रहे हो। और केवल शरीर ही रहा नहीं जाएगा, इसलिए स्थिर करो माने बुद्धि को एकदम स्थिर करो, नहीं तो पेंडुलम जैसे डोलती रहेगी। एकदम स्थिर करके अपने इष्ट मंत्र में या इष्ट देह में लगाओ। और इसके बाद में समाधि, समाधि हो गए, समाधि, उनकी बुद्धि कहां ले गए? जड़ जगत से ऊपर उठा लिया, देहात्म बुद्धि छोड़ दिया। और भगवान जो संपूर्ण रूप से सच्चिदानंदमय तत्व हैं, उनके समान अपने बुद्धि को बनाया, अर्थात शुद्ध चित चिन्मय बनाया। बनाया माने आविर्भूत हुई वो, और होने के बाद में रामचंद्र जी के लीलाओं के लिए प्रार्थना करने लगे। ये लीला जो है ना, ये भी सच्चिदानंदमय है। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, उनके परिकर सब सच्चिदानंद तत्व हैं। इसलिए लीला कोई ये मात्र कहानी है ऐसा मत समझो। क्या समझो? अप्राकृत व्यक्ति है, अर्थात भक्ति है वो। वो हृदय में वो लीलाएं अपने आप आएंगी। इनका भी ऐसा ही हुआ। देखा क्या? रामचंद्र जी का जन्म हुआ। जैसे कैसे जन्म हुआ ये बहुत, कौन ऋषि? श्रृंगी ऋषि आए और उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, और कैसे उनकी रानियों ने उसका यज्ञ का भाग खाया, और उसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कैसे पैदा हुए, बचपन में कैसे हंसते थे ये। कुछ बोल छ एक बार था। अच्छा, कैसे बोलते थे, कैसे चलते थे, कितना बजा भी? अभी कुछ नहीं। कैसे चलते थे, कैसे चलते थे, कैसे बोलते थे? एक कौवे के देख करके मालपुआ रामचंद्र जी खा रहे हैं नंगे, और उसको दे रहे हैं, उसको ऐसे लुभा रहे हैं, और वो अपने दोनों पैरों पर एकदम टप टप करता हुआ उनके निकट आता है, और फिर किलकारी मार करके रो करके दौड़ते हैं मैया के पास में, घर के भीतर। और फिर जब वो इधर आ जाता, फिर उसको दिखलाते हैं। अंत में वो काकभूषुंडी जी, उनके कौवा वो कौन था, काकभूषुंडी, उनके मुख में पहुंच गया और लाखों करोड़ों वर्ष तक अखिल विश्व ब्रह्मांड में घूमता हुआ। और फिर कहीं किसी जगह में ऐसे ही कर रहे थे, उसको ज्यों ही रामचंद्र जी हंस दिए तो उनके मुख से बाहर आ गए, उनको आशीर्वाद दिया, अब से माया तुमको नहीं व्यापेगी, हजारों मील तुमसे दूर रहेगी। ऐसी ऐसी सब लीलाएं। एक समय स्नान करने गए तो रावण वहां पर आया और उनके चरणों को पकड़ करके उनको डुबाना चाहा, और रामचंद्र जी ने किया क्या, एक उसमें तिनका बहता हुआ जा रहा था, उसको उठाया और उसे बाण पर लगा करके, ऐसे ही तिनके पर तिनका रख करके अब बाण चलाया और उसे मारा, तो वो कहां जाकर के, लंका में जाकर के गिरा। नहीं, ये भी, इसका भी, ये बाल लीलाओं में, बाल लीलाओं में जसोदा जी के गोदी में खेल रहे हैं, कैसी कैसी अपूर्व लीलाएं कर रहे हैं। क्या जसोदा कौशल्या जी उसमें महर्षि अपने योग धर्म से, योग के माने भक्ति योग के बल से भली भांति लीलाओं का साक्षात्कार किया। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ में पिताजी के आदेश को पालन करने के लिए चले गए, क्रोध से गए होंगे। गुरु जी ने कहा जे देखो ये काम कराओ, नहीं क्या कहा जे अच्छा उस मठ में जाओ, तो वो क्या करेंगे, अच्छा मठ में जाते हैं, अपनी लुकटी बुकटी सब कुछ गठरी ले ली और पैचार कर दिया, पैचार माने क्या, और जिस मठ में कहा गया उस मठ में नहीं गए, कहां गए, अपना एक बिजनेस केंद्र खोल दिया, फिर मठ में आए नहीं। कुछ दिनों के बाद में हुआ क्या, वहीं पर शादी उदी भी कर ली और अंत में नरक में डूबे। तो ऐसा आदेश होना चाहिए, पिताजी ने आदेश दिया और वो हंसते हंसते गए। लक्ष्मण जी को कुछ क्रोध हुआ, इनको क्रोध नहीं हुआ, उनका भी क्रोध शांत किया। किस प्रकार से कैकई न चाहते हुए भी रामचंद्र जी के वरदान से, ये गुप्त बातें हैं, उन्होंने रामचंद्र जी ने उनसे वरदान मांगा था, मैया तुम्हें एक बात मांगता हूं, तू मुझे बड़ी प्यार करती है, जरूर देगी, क्या, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम हमको वनवास के लिए हमको जरूर भेजना, देवताओं का कार्य करना है, विश्व का कल्याण करना है, नहीं तो हमारे भक्तों का उद्धार नहीं होगा, किसका, जय विजय का। इसके कारण से जगत की लांछना अपने से पर लेकर के भी और ऐसा काम किया, जैसे शंकर जी मायावाद का प्रचार किया वैसे उससे भी हलाहल भरा कार्य, इसलिए ये जगत वंदनीय है। इसके बाद में राम विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण जी सिद्धाश्रम में गए। किस प्रकार से उन्होंने मारीची को उड़ा दिया लंका में और उनके भाइयों का वध किया, ताड़का का वध किया, सुबाहु का वध किया। इसके बाद में धनुष यज्ञ में जनक नंदिनी सीता जी का वर्ण किया। रामचंद्र जी का परशुराम का संवाद हुआ, जबकि ये धनुष यज्ञ हुआ और विवाह हो गया तो उसी समय में तुलसीकृत रामायण के अनुसार और वाल्मीकि रामायण के, जब धनुष टूटा और सीता जी ने उनके गले में माला दी और उसी समय विवाह की अभी चल रही थी, अब विवाह होने जा रहा है, और उसी समय में परशुराम जी भयंकर रूप धारण करते हुए अपनी कुल्हाड़ी के साथ में, फरसे के साथ में आए और उस समय में लक्ष्मण जी के साथ में संवाद हुआ। क्रोध एक शक्ति का प्रतीक है, इसलिए लक्ष्मण जी ने उनको क्रोधित किया और उनका क्रोध से उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। क्रोध से, क्रोध करने से शक्ति भाई क्षीण होगी, इसलिए क्रोध मत करो, साधन भजन में चौपट हो जाएगा, क्रोध से क्षीण हो जाएगी शक्ति। इसलिए राम लक्ष्मण जी उनको कुछ ऐसी बातें कर, मैं कुम्हड़े का बतिया नहीं हूं, कुम्हड़ बतिया मैंने क्या, ये काशी फल होता है, उसमें छोटे छोटे फल लगते हैं, और उसमें देखो ये बड़ा पुष्ट है तो बस साथ ही साथ में वो सड़ जाएगा, वो नहीं बढ़ेगा। तो मैं कुम्हरा बतिया नहीं हूं जो तुम आपने ऐसे कर रहे हैं जो मैं तुम्हें मार डालूंगा तो मैं वैसे हो जाऊंगा, ऐसा हमको मत समझिए। मैं तो आपको जान रहा था जैसे आप तो साधु संत हैं, किंतु साधु संत का वेशधान के लिए ये कुल्हाड़ी क्यों रखा, उस पर और बिगड़ गए, जितने बिगड़ रहे और भी उनको। रामचंद्र जी बीच बीच में कुछ कहते हैं, कहिए ये साक्षात विष है और ये कैसा है, ऊपर से मधुर है और भीतर से विष भरा पड़ा है, ये दोनों एक ही समान है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने बचपन में कितनी धनुहिया तोड़ दी, धनुहिया मैंने छोटे छोटे धनुहिया तोड़ दी, तब तो क्रोध नहीं हुआ, और ये पुरानी धनुहिया मैंने तोड़ दी, ये हमारे भाई ने छुआ और टूट गई, तो उसमें दोष क्या है, ये धनुष का दोष आज ये सड़ा गला होगा इसलिए वो टूट गया। फिर रामचंद्र जी ने कहा मैं आपका दास हूं, हमको क्षमा कीजिए, ये लड़का अभी बच्चा दूध के दांत नहीं टूटे हैं। कहिए तुम ऐसा ऊपर से तुम क्षमा मांगता है, ये भीतर से ऐसा करता है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये मैं धनुष देता हूं, इसको चढ़ाओ तो जरा। बस देने के साथ ही साथ अपने आप चढ़ गया, उनका अभिमान दूर हो गया, उनके चरणों में गिर गए, और इस तरह से फिर वो अपने स्थान में लौट गए, शादी हुई। ये भी देखा, ये भी रामायण का एक